arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन।
सामाजिक स्थिति। पहला, परिवार। उत्तर वैदिक काल में परिवार पितृसत्तात्मक होता था। संयुक्त परिवार की व्यवस्था प्रचलन में थी। परिवार का मुखिया पिता होता था। पिता को परिवार की समस्याओं को दूर करने और अपनी संतान पर विशेषाधिकार प्राप्त था। घर के सभी सदस्य परिवार के मुखिया का सम्मान करते थे और उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते थे। दूसरा, समाज में स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति शोचनीय हो गई थी। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियां अपना सम्मान और महत्ता खो रही थी। अब उन्हें मदिरा और जुए की श्रेणी में रखा जाने लगा था। कन्या का जन्म दुख का कारण माना जाने लगा था। अथर्व वेद में कन्या के जन्म पर खिन्नता व्यक्त की गई है। स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर वी एम आमटे का कथन है कि स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी। वे पुरुषों की भांति सभा में उपस्थित नहीं हो सकती थी। कन्याएं भी ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करती थी। तीसरा, विवाह। ऋग्वेद काल की तरह ही समाज में विवाह अनिवार्य थे। धार्मिक कार्य को करने और पुत्र जन्म करने के लिए विवाह आवश्यक थे। पुरुष को स्त्री के बिना अपूर्ण माना जाता था। राजकीय वर्ग में बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन एक स्त्री के अनेक पति नहीं हो सकते थे। विधवा विवाह होते थे क्योंकि यज्ञ को संपन्न करने के लिए पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था। विवाह अपनी ही जाति में होते थे, इसलिए सजाती विवाह होते थे। विवाह में पुत्री को दहेज देने की प्रथा थी। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा के कोई उदाहरण नहीं मिले हैं। चौथा, जाति व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। अब तो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था वह पैतृक आधार पर उसी जाति का माना जाता था। जाति व्यवस्था चार वर्गों में विभाजित की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धार्मिक कार्यों को संचालित करने वाले ब्राह्मण कहलाए, युद्ध में रत रहने वाले क्षत्रिय, व्यापार और कृषि कार्य करने वाले वैश्य और तीनों वर्गों की सेवा करने वाले शूद्र कहलाए। ब्राह्मणों और क्षत्रिय में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी। शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। अब जाति व्यवस्था जटिल हो गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का शूद्रों के साथ खान पान और विवाह निषेध था। अंतर जातीय विवाह नहीं होते थे। पांचवा, शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने आश्रम जाते थे। ऋषियों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होती थी जिससे शिष्यों का चहुमुखी विकास हो। छठवा, आश्रम व्यवस्था। आर्यों की आयु सामान्यतः 100 वर्ष होती थी और इसी के आधार पर आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी। 25-25 वर्ष के आधार पर आश्रम को चार भागों में विभक्त किया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, उपनयन संस्कार से 25 वर्ष तक। उपनयन संस्कार के पश्चात 25 वर्ष की आयु तक आर्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्य कठोर नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करते थे। गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष। ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। वह सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष। इस आश्रम में मनुष्य सामाजिकता से विरक्त होकर वन की ओर गमन करेगा। वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने को त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करता था। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। इस आश्रम में मनुष्य सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने को अग्रसर करता था।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।